ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। एवं स्वतनुजा आत्मनुरागावेशितचिता शौचाध्ययना व्रतनियमा गुरु अनला शुश्रूषणा अपकुर्वाणक कर्मान्यान अभियुक्तानपि समन अनुशिष्टेन भाव्य भाव्यम इत्य सदाग्रह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावद् अनधिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृता। तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग केवल सुनिए पढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। एवं स्वतनुजयात्म अनुरागावेशितचित शौचाध्ययन व्रत नियम गुरु अनल शुश्रूणा द्यो शुश्रूषण औद्योपकुर्वाणक कर्मान्य अभियुक्तानपि समनुशिष्टेन भाव्यम इत्य सदाग्रह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत् अनधिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत् उपसंहृता। शब्दार्थ एवं इस प्रकार स्व निज तनुजे पुत्र जड़ भरत में आत्मने जिसे वे आत्मवत मानते थे अनुराग आवेशित चिता अपने पुत्र के प्रेम में अनुरक्त ब्राह्मण शौच पवित्रता सफाई अध्ययन वैदिक साहित्य का अध्ययन व्रत समस्त व्रतों का पालन नियम विधि विधान गुरु गुरु का अनल अग्नि का शुश्रूषण शुश्रूषण आदि सेवा इत्यादि अपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्माणि समस्त कर्म अनभियुक्तानि अपि पुत्र के चाहने पर भी पुत्र के न चाहने पर भी सम अनुशिष्टे न पूर्णतया शिक्षित होकर भाव्यम होवे इति इस प्रकार असत आग्रह अग्राह्य मूर्खता वाले पुत्रम पुत्र को अनुशास्य शिक्षा देकर स्वयं तावत उस तरह अनधिगत मनोरथ अपनी आकांक्षाएं पूरी न होने से कालेन काल के प्रभाव से अप्रमत्तेन जो भुलक्कड़ नहीं है स्वयं साक्षात गृहे अपने घर में एव निश्चय ही प्रमत्तः बुरी तरह से आसक्त उपसंहृता मृत्यु हो गई मर गए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें शौच, वेद अध्ययन, कर्म कांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थी। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं वे यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु अपनी पारिवारिक झमेलों तथा कार्यों में अत्यधिक व्यस्त न हो। वे भले ही मृत्यु को भूले रहें, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले ही भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को तो स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय से उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि बताना चाहता था, किंतु उसका पुत्र इसके लिए तैयार न था। जड़ भरत तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परमात्मा भगवान के परम धाम लौटने के लिए आकुल रहते। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह न थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में पूर्णतया अनुरक्त रहना चाहता है तो वेद वर्णित विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम शिरोधार्य हैं, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जिसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात निस्त्रय गुण्य पद तक उठे। भगवद्गीता के 2 अध्याय श्लोक 45 में यह प्रसंग इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके इनसे ऊपर उठ। संपूर्ण द्वंद्वों तथा योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ बन। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेईस श्लोक में जो राजर्षि भरत जिनका पूर्व चरित्र जब राजा थे वो हम सुन चुके हैं। जड़ भरत का पूर्व चरित्र हम लोग सुन चुके हैं जब वो राजा राजर्षि भरत के नाम से राजा थे और वे एक महान राजर्षि के नाम से जाने जाते थे जो बाद में चल करके हरिण का शरीर प्राप्त करते हैं। फिर हरिण के शरीर से वो जड़ भरत मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। यहां से प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजर्षि भरत ही जड़ भरत हैं और मृग में आसक्ति के चलते उन्हें दो शरीर और प्राप्त करना पड़ा। भगवान में जिनकी मति लगी हुई थी और स्वरूप सिद्धि के लिए भगवत प्राप्ति के लिए पुलहाश्रम में जो भजन करते थे गंडकी नदी के तट पर युवावस्था में संन्यास धारण कर लिए थे और समग्र ससागरा पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी उन्होंने तुक्षवत मलवत संसार को साम्राज्य को स्त्री पुत्र परिवार को त्याग करके पुलहाश्रम में जाकर भजन कर रहे थे। अपने संकल्प में अडिग रहने वाले राजा राजर्षि भरत को थोड़ी सी भूल से मृग का शरीर प्राप्त करना हुआ और मृग के शरीर के उपरांत पुनः वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं जिनको जानने के लिए राजर्षि भरत के चरित्र को आख्यान को समझाने के लिए उनको जड़ भरत नाम से बताया गया है। तो एक मृग से एक मृग की आसक्ति चलते दो शरीर और उनको लेना पड़ा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि एक मृगा के कारण भरत धरे दुई दे और तुलसी उनकी क्या गति जिनके नाना ने। तुलसीदास बहुत सुंदर इस पर व्याख्यान देते हैं कि एक मृगा के चलते राजर्षि भरत को दो देह प्राप्त करना पड़ा। एक मृगा के कारण भरत धरे दुई देह तुलसी उनकी क्या गति जिनके नाना ने। तुलसीदास लिखते हैं कि वे लोगों की क्या स्थिति होगी जिनके हृदय में जिनके चित्त में अनेक वस्तुओं अनेक लोगों के प्रति आसक्ति या अनुराग रहता है। नाना नेह, नाना प्रकार की जिसकी आसक्ति है उसको कितना शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, अनेक जन्म जन्म तक उसको इस संसार में आना पड़ेगा। थोड़ा सा आसक्ति से राजर्षि भरत को दो बार इस भौतिक जगत में पशु शरीर से फिर ब्राह्मण शरीर में आना पड़ा। तो जिनकी आसक्ति के अनेक प्रयोजन हैं, अनेक उपादान हैं, धन में, घर में, पुत्र पौत्र आदि में जिनकी आसक्ति रहती है, उनको अनेक जन्मों तक इस संसार में बार बार जो है आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के जठराग्नि में उसको आना पड़ता है। तो इस चरित्र से हम समझ सकते हैं कि आसक्ति जो है, किसी के प्रति भी आसक्ति हमारे भौतिक जीवन की वो जननी है। हमारा नया जीवन भौतिक जन्म होता है और फिर इस 84 लाख जनियों में हम भटकते रहते हैं। तो राजर्षि भरत मृग ज्वनि के बाद जड़ भरत नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं, और उनके पिता एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में और ब्राह्मण के समस्त क्रियाकलापों को संपन्न करते थे, वेद का अध्ययन करते थे, वेद का पाठ करते थे और अपने पुत्रों को भी वेद का विद्वान बनाना चाहते थे। ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं और वेद के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और वेद में जो विधि विधान का उल्लेख है उसका ही अपने जीवन में लक्ष्य रखते हैं, वे ब्राह्मण हैं। वेद पठेत भवेत विप्र, ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद का पठन पाठन करे, पठन पाठन यजन याजन। तो जड़ भरत के पिता वेद अध्ययन करते थे और अपने अन्य पुत्रों को भी वेद के विद्वान बना चुके थे। उनके पिता की दो पत्नियां थीं, बड़ी पत्नी से 9 पुत्र थे और दूसरी छोटी पत्नी से जुड़वे संतान थे, जिसमें जड़ भरत थे और इनकी बहन थी, जुड़वे संतान हुए थे। तो ये दूसरी मां के पुत्र थे जड़ भरत। पिता अपने पुत्र को भी वेद का विद्वान बनाना चाहता था और जड़ भरत को प्रतिदिन वेद के श्लोकों को स्मरण कराते थे और इसके पहले ओंकार का उच्चारण कराते थे, ओंकार के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते थे, फिर अग्निहोत्र करना सिखाते थे। लेकिन जड़ भरत ये सब चीज में रुचि नहीं ले रहे थे। उनके पिता चाहते थे कि ब्राह्मण का पुत्र एक होनहार ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कर्तव्य है सम दम तपस्यम शांतिर्यार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। तो ब्राह्मण का जो स्वभावज गुण है उसकी शिक्षा दे रहे थे जड़ भरत के पिताजी, उनको कैसे प्रातः काल में जगना है, प्रातः काल जग करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के गुरु की आराधना करना है, अग्निहोत्र करना है, फिर वेद पाठ करना है, ये नित्य नैमित्तिक कर्म है ब्राह्मण के। भगवान गीता में बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि शरीर की क्या तपस्या है, ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए। तो ब्राह्मण को प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सर्वप्रथम शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम प्रातः काल जग करके गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, माता पिता और गुरुजनों और अपने से बड़े लोगों की आराधना करते थे, चरण वंदना करते थे और उनकी सेवा करते थे। चाणक्य पंडित कहते हैं गुरु माता पिता और अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। चार चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, जस और बल। इसमें भी गीता में भगवान कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपूज्यते। ये शरीर की तपस्या है, जैसे बड़े लोगों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, गुरु की सेवा करना, ये शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा धर्म का पालन करना, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते, शरीर की तपस्या है। फिर वाग की तपस्या क्या है, ब्राह्मण शरीर से भी तपस्वी होते हैं और वाणी से भी और कर्म से भी। फिर वाणी की तपस्या का भगवान वर्णन करते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम नित्यम वाग्मयम तपोच्यते। वाणी की तपस्या है कि हमेशा वाणी से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे और हमेशा स्वाध्याय में निरत रहे। और अनुद्वेग कर्म, और वाणी में अनुद्वेग उद्वेग उद्वेलित करने वाला चीज न हो, और सत्य हो, हितकर हो, सत्यम हितम और सम्य हो। स्वाध्यायाभ्यसनम नित्यम वाङ्मयम् तपुच। तो जड़ भरत के पिताजी अपने पुत्र को योग्य ब्राह्मण बनाना चाहते थे, उनको ओंकार से प्रारंभ किए। वैदिक मंत्र ओम से चालू होता है, ओम, तो ओम का ज्ञान कराना चाहे। जब ओम बोलते थे तो जड़ भरत को जब उच्चारण कराते थे तो ठीक उसके विपरीत तो बोलते थे। ओम बोलते थे तो वो गधे की तरह स्वर निकालते थे। उनके पिताजी फिर भी बहुत प्रयास करते थे। पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, अपने पुत्र को सुसंस्कृत बनाने के लिए वो अथक प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो ओम भी नहीं बोल पाए। यहाँ पीछे के श्लोक में कहा गया है, ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत के प्रति स्नेह से पूरित होने के कारण उससे अत्यधिक अनुरक्त था, अतः जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रचालन करने की शिक्षा दी। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दे। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें पहले ही धो लेते, तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया, किंतु चार मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल न हो सके। उनके पिताजी चार महीने तक प्रयास किए, ओंकार और वैदिक मंत्र में गायत्री मंत्र, ये सब मंत्रों को प्रयास करते थे उच्चारण करके। पहले वेद जो है श्रुति होता था, सुन करके स्मरण होता था, और वेद को धारण करने वाले जो ब्राह्मण होते थे वो भी श्रुतिधर होते थे, सुन करके कंठाग्र कर लेते थे। तो जड़ भरत के पिताजी ने ओंकार और गायत्री मंत्र और भी बहुत सारे मंत्र सिखाने का प्रयास किए। चार महीने बीत गए, अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं चार मास बीत जाने पर भी उसे सिखाने में सफल न हो सके। उन्हें ग्रीष्म और बसंत ऋतु में सिखाते थे। शरद ऋतु में ठंडी होती है, आलस होता है, प्रमाद होता है, तो उन्होंने उपयुक्त समय चयन किया कि शायद गर्मी में ये सीखने का प्रयास करेगा। तो बसंत ऋतु में, जिसमें न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्मी होती है, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। तो ग्रीष्म ऋतु में, कि गर्मी में लोग जल्दी स्नान कर लेते हैं, जो आलसी हैं वो भी गर्मी में जल्दी स्नान कर लेते हैं। इसके बाद भी जड़ भरत ओम भी नहीं बोल सके। जब ओम बोलते थे तो आ बोलते थे या ना बोलते थे, ठीक विपरीत बोलते थे। जब उनको नहाने के लिए बोला जाता था तो बैठ जाते थे, जैसे वो कुछ सुन नहीं रहे हैं, जैसे बहरे हैं। जब उनको शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता था तो हाथ नहीं धोते थे, या पहले हाथ धो लेते थे, शौच दाने से पहले ही साबुन या मिट्टी लगाकर हाथ मलते थे, या लोटा लेकर लोग पहले मैदान में जाते थे, फील्ड में जाते थे, तो शौच जाने से पहले लोटा मलने लगते थे, विपरीत आचरण करते थे, तो अन्य लोग समझते थे कि ये मूर्ख है, मूर्खवत, जड़वत, बधिरवत और गुंगवत। जड़वत और बहरे, गुंगे और मूर्ख की तरह आचरण करते थे, इसलिए इनको लोग मूर्ख कहते थे, जड़ कहते थे, जड़ भरत। ऐसा आचरण करते थे जिसे सब लोग समझ गए कि ये मूर्ख है, इसको इसका दिमाग नहीं है। मुखवत, बधिरवत और जड़वत। जब कोई उनके घर के लोग काम करने के लिए कहते थे, कुछ मिट्टी खोदने के लिए कहते थे, तो मिट्टी खोदते रहते थे, समुचित गड्ढा होने के बाद भी वो गड्ढा और करते रहते थे। या कभी कभी कृषि में उनके भाई लोग, जो सौतेले भाई थे, कहते थे काम करने चलो, तो खेत में मेड़ ठीक करना हो, मिट्टी से उसको बांधना हो, तो भाई लोग कहते थे कि मेड़ को ठीक करो, मेड़ के लेवल में मिट्टी भर दो, तो मिट्टी भरते रहते थे, मेड़ से कई गुना ऊपर कर देते थे। तो घर के लोग समझते थे कि इसको सेंस नहीं है कि कहाँ कितना मिट्टी डालना है। कभी कभी घर के लोग इनको खाने के लिए देते थे तो नहीं खाते थे, या कभी बिना बुलाए भी खा लेते थे। इनके आचरण को देख करके इनके पिताजी को बहुत खेद होता था। पिताजी चाहते थे कि पुत्र को अग्निहोत्र कराना, वेद पढ़ना, ये सब सिखा दूं जिससे योग्य हो जाएगा, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन जड़ भरत ठीक वो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे, वो सांसारिक कोई दायित्व नहीं लेना चाहते थे, वो हमेशा मानसिक अवस्था से भगवान के भजन कीर्तन में अनुरक्त रहते थे। रूपा जी लिखते हैं कि वो हमेशा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें ही रत रहते थे। उनकी इंद्रियां अंतमुखी थी और अंतकरण से हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन भजन ये सब करते थे। बाह्य दृष्टि से अपने को ऐसा प्रदर्शित करते थे मानो ये मूर्ख है, जिससे लोग इन्हें गृहस्थ जीवन के अयोग्य समझें या पढ़ने के अयोग्य समझें। जबकि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान में वो पारंगत थे और स्वरूप में सिद्ध थे, अपने स्वरूप में स्थित थे, लेकिन बाहरी दृष्टि से ऐसा वो करते थे जिससे लोग उनकी उपेक्षा कर दें। कोई उनको घर के कार्यों में या पूजा पाठ के कार्यों में, जैसे ब्राह्मण लोग कर्मकांड में जो भी धन उपार्जन होता है उसे परिवार चलाते हैं, या वेद को अध्ययन करके कर्मकांड करना ही अपना जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन जड़ भरत वैसा नहीं चाहते थे। कर्मकांड में अपने आप को नहीं फंसाना चाहते थे, वो जानते थे कर्म कांड में जाने के बाद फिर भक्ति कांड से वंचित रह जाएंगे, इसलिए उसमें रुचि नहीं लेते थे। माधवेंद्र पुरी लिखते हैं कि जो भक्ति के उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उनको ये वेद के विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि हे कर्मकांड के नियम, कृष्ण फिर इन कर्मकांडों के करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री माधवेंद्र पुरी ने कहा है, हे कर्मकांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में संलग्न हूं। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, फलतः वे कोई विधि विधान पालन नहीं करना चाहते। इसी प्रकार हरदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्मकांड पद्धति की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए थे, किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य के नाम से पुकारा। जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे, क्योंकि पूर्व के तीन जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था, अतः अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते, यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। तो जो माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि मैं इनमें रुचि नहीं रखना चाहता हूं, हे संध्या बंदन, हे कर्मकांड के लिए आपको प्रणाम है, मैं आपको अब नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं हमेशा अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन, उनका कीर्तन और उनका मनन करता हूं। तो इस अवस्था में व्यक्ति को वेद के जो कर्मकांडीय नियम है उन्हें अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद यहां कोट करते हैं कि वेद मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों की व्याख्या करते हैं और जो भक्त होते हैं वो इनसे ऊपर हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम वेद के जो वेदों में वर्णित त्रैगुण्य विषय हैं इसे ऊपर उठ जाओ और संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्त होकर के योगक्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओ। योगक्षेम कुछ चाहिए हमें जो है उसकी रक्षा चाहिए, हमें हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है, हमारी क्या सुरक्षा है, हमारा भविष्य कैसा होगा, इसके लिए चिंता नहीं करना या जो है उसकी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं करना को योगक्षेम कहते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसको वेद मार्ग पसंद नहीं होता है, वो भक्ति मार्ग में चलता है। और वेद के और भी जो नियम हैं, शास्त्रीय नियम हैं कि हमें स्नान करना है तीन बार गायत्री करना है, अग्निहोत्र करना है और अतिथि गो ब्राह्मणों की सेवा करना है, तो उस अवस्था में व्यक्ति को ये सब चीजें जरूरी नहीं होती हैं। जैसे जड़ भरत कभी कभी स्नान भी नहीं करते थे और वही वस्त्र महीनों पहनते थे और शरीर उनके काले हो गए थे, जनेऊ भी बिल्कुल काला हो गया था, वो शौच करने के बाद भी स्नान नहीं करते थे, अवधूत रहते थे, अवधूत वेश में विचरण करते थे, लेकिन हमेशा भगवान का स्मरण रखते थे, हमेशा कीर्तन करते थे और जब कोई आता था तो गूंगे की तरह चुप हो जाते थे। जब लोग आते थे तो बिल्कुल अंतर्मुखी, इंद्रियों का अंतर्मुख कर लेते थे और कुछ बोलते नहीं थे। लोग बोलते थे फिर भी जैसे वो सुन नहीं रहे, गूंगे बहरे की तरह हो जाते थे। एक बार उनके सौतेले भाई लोग जड़ भरत को जंगल में रख दिए, देखे कि ये घर का काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, गांव में कोई भी बोलता था चलो काम करने तो चल देते थे, दूसरे के घर के भी काम में लग जाते थे। जैसे गांव में कोई ऐसा आदमी होता है जिसको पता नहीं होता है कि ये अपना घर है कि दूसरे का घर है, किसी के घर में जाता है, किसी के यहाँ खा लेता है, किसी के काम में लग जाता है। तो गांव के लोग कभी कहते थे कि चलो हमारे यहाँ ये काम है तो चल जाते थे, वो सोचते ही नहीं थे कि ये कौन है, कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उनके घर के लोग सोचते थे कि बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से ये पागल है, इसको व्यवहारिक चीज मालूम ही नहीं है। तो घर वाले उनको बोले ठीक है जंगल में रहो जहाँ खेती है, वो जानवरों से उसकी सुरक्षा करो। तो चारों तरफ जंगल में जो खेत होता है वहाँ जंगली जानवर खेती को खा जाते हैं, इनके भाइयों ने उनको खेती में रख दिया। जैसे जंगल के खेत की रक्षा के लिए वहाँ बनावटी आदमी रखा जाता है, घास का एक बनावटी आदमी रखा जाता है, उसके ऊपर घड़े रखकर सिर का आकृति दिया जाता है, दो हाथ उसमें बनाया जाता है, पैर बनाया जाता है, उसके हाथ में कोई हथियार दिया जाता है, उसको पोशाक पहनाया जाता है कि जंगली जानवर देख करके दूर से समझ जाएंगे कि कोई आदमी खड़ा है। तो बोले ऐसे इसी को हम लोग खेती में रख देते हैं इसको देख करके जंगली जानवर नहीं आएंगे और खेती सुरक्षित रहेगी। तो बनावटी आदमी की तरह इनको खेती में रख दिए और वहां निर्जन स्थान में सुनसान स्थान में खूब कीर्तन गाते थे और भगवान का भक्ति करते थे। लेकिन दिन में अगर कोई आता था तो दूर से ही देखकर चुप हो जाते थे, कोई कितना भी प्रयास करता था बुलाने के लिए लेकिन जैसे लगता था बिल्कुल बहरे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, देख भी नहीं, ऐसे ऐसे देखते थे मानो इनको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हैं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। तो लोग इनके पास आना भी बंद कर दिए, कोई आता नहीं था, लोग यही समझते थे कि बेकार आदमी है, कोई बात करने के लिए भी नहीं आता था, कोई हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आता था, उनका समय कोई व्यर्थ में नहीं जाता था, बिल्कुल अपना समय जो है भगवान के शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इसमें लगाते थे, क्योंकि बिल्कुल सावधान थे, पूर्व की घटनाओं से बिल्कुल सावधान होकर के सांसारिक लोगों से मित्रता नहीं करते थे, सांसारिक बातों में अपने को नहीं उलझाते थे, व्यर्थ के प्रपंचों में अपना रुचि नहीं दिखाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार में लोग घर गृहस्थी के कार्यों में इतने आसक्त होते हैं कि वो मृत्यु को भी भूल जाते हैं कि हम एक दिन मरने वाले हैं, और मृत्यु की भी परवाह नहीं करते हैं, या सोचते हैं कि आज हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है या हम नहीं मरने वाले हैं। हम मृत्यु को भूल भी जाएं फिर भी मृत्यु हमें नहीं भूलती है, मृत्यु को हमेशा याद है कि हमें कब उसे ले जाना है, और मृत्यु अपने समुचित समय पर आती है, उठाकर ले जाती है। जैसे चूहा जो है गृह कार्य में इतना व्यस्त रहता है वो काल रूपी सर्प को भूल जाता है कि बगल में सर्प जो है उसको लक्ष्य करके बैठा है। कभी कभी चूहे जो लोग गांव में देखे होंगे खेती में, चूहे धान के या गेहूं के बाल को काट करके बिल में ले जाते हैं, वो बिल में स्टोर रूम बनाते हैं, एक आवासीय रूम होता है, एक अनाज रखने का रूम होता है, और उसके इर्द गिर्द में कई इमरजेंसी गेट होते हैं, आप संकटकालीन द्वार होते हैं, जो मेन प्रवेश द्वार होता है उससे दूर पर आपातकालीन द्वार होता है, चूहा बनाता है कि कभी सर्प आएगा तो आपातकालीन द्वार से भाग जाएगा। हम लोग गांव में देखे हैं कभी कभी बचपन में हम लोग देखे, जो चूहे मारने वाला होता है तो जो आपातकालीन द्वार होता है उसको पहले बंद कर देता है, फिर मुख्य द्वार में वो पानी डालता है, तो चूहा आपातकालीन द्वार बंद है तो इसी मेन द्वार से आता है तो चूहा मारने वाला उसको मार देता है। गांव में जो पुल भील होते हैं या निम्न जाति के लोग चूहे मारते हैं, जंगली चूहे या खेती में जो चूहे होते हैं, तो चूहा अपने घर में अनाज जो है, अनाज को इकट्ठा करता है बाद के लिए, संचय करता है, और संचय करने में इतना व्यस्त होता है, जैसे हाईवे पर ट्रक चलाने वाले लोग इतने ट्रक चलाने में व्यस्त होते हैं, वो दुर्घटना का ख्याल नहीं करते हैं। कभी कभी फिर भी दुर्घटना हो जाती है, बड़े बड़े ट्रक चालक दुर्घटना में मर जाते हैं। तो उसी तरह चूहा हाईवे पर इतना ट्रांसपोर्टेशन में व्यस्त रहता है, और चूहे को देखता नहीं है, चूहा उसको पकड़ लेता है, काल रूपी सर्प उसको पकड़ लेता है और मर जाता है, उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती है, जितना भी कमाया है संचय किया है वहीं रह जाता है। तो घर गृहस्थी में हम चूहे की तरह भाग दौड़ करते हैं, चूहे की तरह भाग दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं, और मृत्यु आकर उठा ले जाती है। तो हमें मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए, जो अध्यात्म में उन्नति प्राप्त किए हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी मृत्यु कल होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन संसार के आकर्षण में इतना उनको आस्वादन होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है, भूल जाते हैं लोग, स्वाभाविक भूल जाते हैं। हम माँ के गर्भ में भी भगवान का याद करते हैं, माँ के घर में हम स्मरण किए कि हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन बाहर आने पर माइक वस्तुओं से, माइक बातों में, माइक विचारों में हम भूल जाते हैं कि हमें मरना है, मृत्यु होने वाली है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने प्रश्न किया कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? लोग बोलते हैं सात आश्चर्यजनक चीज है, ताजमहल है, चीन का दीवार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम मरने वाले हैं लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं। एक ट्रक पर लिखा हुआ था, कल हम देखे, जरा सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, ट्रक के पीछे लिखा रहता है। बहुत लोग अलग अलग चीजें लोग लिखते हैं, कुछ लोग दर्शन भी लिखते हैं, कुछ लोग अलग चीज भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उसी पर लिखा हुआ था जरा सोच कर सोचो साथ क्या जाने वाला है। हम जितना संग्रह करते हैं, चूहे की तरह भागदौड़ करते हैं, इतना संग्रह करते हैं कि कई पीढ़ी तक हम सोचते हैं कि किसी को कमाना न पड़े, लेकिन हम क्या लेकर जाने वाले हैं, हमारे साथ क्या जाने वाला है, फिर भी हम मृत्यु को, मृत्यु का प्रतिकार करते हैं, हम मृत्यु की उपेक्षा करते हैं, मृत्यु हमें नोटिस देती है फिर भी हम बाल काला कर लेते हैं। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि लोग दांत नया लगा करके, कृत्रिम दांत लगा कर बाल काला करके, इससे भी नहीं होता है तो सर्जरी करा करके और यह प्रदर्शित करते हैं कि नहीं मैं अभी बूढ़ा नहीं हूं। कोई कोई बूढ़े लोगों का बोल दीजिए कि बूढ़े बाबा, तो लोग बहुत गुस्से हो जाते हैं। यहाँ एक भक्त थे, रासा या क्या नाम था, मिलिट्री के रिटायर थे, वो सप्लाई देते थे ब्रह्मचारी लोगों को साबुन सर्फ, नाम मुझे याद नहीं है, हम शुरू शुरू आए थे तो वो सप्लाई देते थे, तो उनको बूढ़े कहने पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, बूढ़ा बोल देने से बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो हम बूढ़ा हो या न हो, हम बूढ़ा हैं, हम एक दिन या दो दिन या एक महीना एक साल हम बूढ़े ही हैं। हम एक दिन भी हमारा जो व्यतीत होता है, हम मृत्यु के नजदीक जाते हैं। एक साल हमारा व्यतीत हुआ तो हम एक साल और करीब मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। हम रोज मृत्यु के एक कदम, दो कदम, सौ कदम, हजार कदम नजदीक पहुंच रहे हैं, फिर भी हम मृत्यु को इग्नोर करते हैं कि हम नहीं मरने वाले हैं, अभी हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम् शेष अस्थावरम इक्षन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। प्रत्येक रोज लोग काल के ग्रास हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्रत्येक रोज हम मृत्यु के तांडव को देखते हैं, मृत्यु की क्रीड़ाओं को देखते हैं, लेकिन हम भान नहीं करते हैं कि हम भी, हमारी भी बारी आ रही है, हम भी लाइन में हैं। आप सभी, हम सभी कतार में हैं लेकिन हम सोचते ही नहीं कि हम कतार में हैं। हम कैसे कतार में हैं? जैसे हम लोग चबेना खाते हैं, चना, गांव में चना या भुना हुआ चीज लोग ऐसे गमछा में ले लेते हैं। बचपन में हम लोग मूढ़ी, लाई, जो भी होता था, गमछे को ऐसे बांध करके इसमें ले लेते थे, लाई है, मूढ़ी है, जो भी है, तो कुछ गोद में लिए रहते थे, कुछ हाथ में, कुछ मुख में। हम सभी लोग काल के हाथ से ग्रसित हैं, काल के कुछ झोली में हैं, कुछ हाथ में हैं, कुछ मुख में हैं। जो झोली में है वो बच्चे समझिए, क्योंकि बच्चे भी मर जाते हैं, आदमी बाल अवस्था में भी मर जाता है। तो जो लोग थोड़ा मृत्यु से दूर हैं वो झोली में हैं, मतलब झोली में, गोद में हैं, और कुछ हाथ में है और कुछ मुख में है, कुछ मुख में, कुछ गोद। खलक चबेना काल के, खलक चबेना, काल के चबेने की तरह हम सभी लोग चबाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह भान नहीं हो रहा कि हम, हमारी बारी आने वाली है, हम कतार में हैं। अब अगर आप कतार में हैं तो क्या करना चाहिए? निर्माण व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा क्या क्या काम है? तो श्रवणम कीर्तनम। लेकिन आश्चर्य क्या है कि हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि नहीं लेते हैं, हम दूसरे सांसारिक कार्यों में जो हमारा स्वरूप के विपरीत है उसमें रुचि लेते हैं। इसके ठीक विपरीत जड़ भरत स्वरूप सिद्ध थे, अपने पिता के बताए हुए भौतिक कार्यों में, सांसारिक उपलब्धियों के लिए रुचि नहीं लिए। यहाँ तक कि ओम गायत्री मंत्र बिल्कुल अनसुना कर देते थे। उनके पिता अपने प्रयास में असफल हो गए और समझ गए कि ये पागल है, ये काम का आदमी नहीं है। राधागोविंद महाराज कहते हैं कि संसार में जो लोग बहुत अच्छा कला दिखाते हैं, बहुत अच्छा विद्वान हो जाते हैं, तो उनका हर जगह मांग होता है। जो लोग अच्छा कविता करते हैं तो उनको भी पहले राजा लोग पकड़कर ले जाते हैं। कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत विद्वान है, बहुत सामाजिक दृष्टि से भी बहुत सुसंस्कृत है, तो राजा लोग ले जाते थे। आजकल भी कोई बहुत अच्छा विद्वान है तो सरकार उसको भर्ती कर लेती है, कोई बहुत शरीर से अच्छा है तो उसको मिलिट्री में ले लिया जाता है। बहुत पढ़ा लिखा है, अपने स्तर से बहुत ओजस्वी है तो उसको भी नौकरी जल्दी मिल जाती है, तो फिर भक्ति में आने का चांस नहीं रह जाता है। तो गांव में लोग कहावत कहते हैं, नीक गीत गाइब न दरबार धके जाई। जो बहुत अच्छे गाते हैं तो दरबार में उनको ले जाया जाता है। पहले के जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तानसेन थे, बीरबल थे, जो बहुत अच्छे अच्छे अपने किसी किसी कला में बहुत ही आगे थे वो लोग, तो ऐसे लोगों को राजा लोग ले जाते थे। तो राजा के पास जाने के बाद फिर राज कार्य में, घर कार्य में व्यस्त होकर के अपना भक्ति का जो अवसर है खो देते हैं। जैसे बिहारी लाल एक बहुत बड़े कवि थे और कृष्ण भक्त भी थे, तो एक बार राजा जय सिंह के दरबार में उपस्थित हुए। राजा जय सिंह भी भगवान के भक्त थे। जो जयपुर में आप जाते हैं गोविंद देव जी का जो मंदिर है, तो उन्होंने अपने सारी संपत्ति को गोविंद जी के नाम से लिख दिए थे, जय सिंह बहुत बड़े भक्त थे, और अपने संपत्ति के वारिस में गोविंद देव जी को का ही नाम रखे थे। तो जय सिंह भक्त होते हुए भी एक बार विषय गर्त में गिर गए थे, अपने राज कार्य, प्रजा का और भक्ति का दायित्व तो भूल करके एक स्त्री में आसक्त हो गए थे, एक रानी में आसक्त हो गए थे। तो उनके दरबार में बिहारी लाल गए, तो एक दिन गए तो फिर राजा से मुलाकात नहीं, फिर एक दिन गए, फिर भी नहीं हुआ, कई बार गए तो पता लगाए, तो उनको पता चला कि राजा अपने कर्तव्य विमुख होकर के विषयाशक्ति में गिर गया है। तो उन्होंने एक पद लिखा, वो पद का आशय यह था कि हे राजा, अभी समय नहीं हुआ है, नहीं नहीं पराग नहीं मधुप मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। जैसे भंवरा जो है फूल में जब कमल खिलता है तो उसमें बंध जाता है, जब कली होता है तो उसका सेवन करता है, कभी कभी पतझड़ में भी अली जो है भंवरा जो है गुलाब के मूल में बैठा रहता है कि फिर इन डालों में फूल आएगा और फिर मैं इसके मकरंद को इसके मधु को पान करूंगा। यही आस अटको रहता अली गुलाब के मूल, वही वही बहरी बसंत ऋतु इंडारण, आशा लगाए रहता है। तो कवि ने लिखा कि अभी तो बसंत भी नहीं है और फूल खिला भी नहीं है, अभी आपकी यह स्थिति है तो आगे क्या हाल होगा, आगे कौन हवाल। अभी फूल जब खिलेगा उसे सुगंध आएगी, मकरंद होगा, उसमें मधु होगा, तो क्या हाल होगा। तो ये पद पढ़ करके राजा जय को अपने कर्तव्य का भान हो गया, वो विषयाशक्ति से ऊपर उठ गए। तो ये दृष्टांत में पहले से ही सावधान है जड़ भरत, वो जहां दो पिछले दो जोनियों में जो भटक गए थे अपने भक्ति मार्ग से, इसे सावधानी रखे थे कि मैं अच्छा बनकर न दिखाऊं, अच्छा करके न दिखाऊं, अच्छा बोलकर न दिखाऊं, अच्छा व्यवहार न करूं, नहीं तो फिर हमें संसार के कार्यों में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने को बिल्कुल मूर्ख जैसा आचरण करते थे, कभी कभी नग्न भी हो जाते थे। इसीलिए राजा रहुगण जब जा रहे थे सिंध प्रदेश से, गंगा सागर जा रहे थे सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में, तो उनका एक पालकी ढोने वाला बीमार हो गया, तो अपने कर्मचारियों को आदेश दे किसी को भी पकड़ लाओ। राजा का आदेश फरमान जारी हुआ, कर्मचारी लोग जड़ भरत को पकड़ लाए, बिल्कुल काला कलूटा शूद्र जैसा, जबकि सबसे ब्राह्मण पद से भी ऊंचे थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से बिल्कुल मूर्ख और शूद्र जैसा लगते थे। तो राजा पालकी में लगा दिए, पालकी में जब चलने लगे तो पद विन्यास हो जाता था, चींटी को देख करके पैर इधर उधर कर देते थे, तो पालकी का जो बैलेंस था बिगड़ जाता था। तो राजा ने कहा कि ठीक से पालकी चलाओ आप लोग। तो अन्य जो पालकी ढोने वाले थे वो बोले कि जो नया पालकी ढोने वाला है ये ठीक से नहीं कर रहा है। तो राजा रहुगण ने कहा कि ठीक से चलो, राजा बार बार रहुगण कहते ठीक से चलो मैं राजा हूं, तो भी पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता था। रास्ते में कभी चींटियों की कतार देखते थे तो छलांग मार देते थे, तो बिल्कुल पालकी ये हो जाता था, जैसे अचानक कोई बड़ा ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेक जब ड्राइवर लेता है तो कैसा सारे यात्री ये हो जाते हैं, मुंह की तरफ हो जाते हैं। तो राजा कभी कभी ऐसे हो जाते थे रहुगण, तो अंत में कहे कि तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं राजा हूं, तुम समझते नहीं हो, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। तो भी जड़ भरत बोल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल अपने आत्मा में भगवान का ध्यान करते थे। तो देखे कि राजा है सत्संग के लिए जा रहा है, योग्य आदमी है, तो इसको उपदेश देना चाहिए। जड़ भरत अपने जीवन में कहीं आदमी को उपदेश दिए थे और उसको भक्त बना दिए थे, वो हमेशा प्रवचन करने के लिए नहीं जाते थे कहीं लेकिन एक आदमी को देखे कि हाँ योग्य आदमी है तो उसी को उपदेश दिए, तब जब वो कहे कि मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा तब बोलना प्रारंभ किए। जब दर्शन बोलने लगे कि हे राजा आप अपने को राजा समझते हैं, आप कब से राजा हैं, आप कब तक राजा रहेंगे, आप किसकी चिकित्सा करेंगे, आप हमारे शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं लेकिन हमारी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, हम कौन हैं, ये सब गीता का दूसरे अध्याय का प्रवचन करने लगे कि आत्मा को तो न काटा जा सकता है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम कले देन तापो न सोसयति मारुत, आत्मा का तो कोई खंड खंड कर नहीं सकता है, तो आप किसकी चिकित्सा कर सकते हैं। राजा सत्संग के लिए जा रहे थे लेकिन वहीं उनको सत्संग मिल गया, तो राजा तुरंत पालकी से कूद गए और राजा जड़ भरत के चरण में गिर गए और प्रार्थना करने लगे कि भगवान के भक्तों को पहचानना बड़ा कठिन है। कोई बालक भी भक्त हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। आप अवधूत वेश में कौन है? कहीं आप देवता हैं, ये कौन है? आप कोई महान भक्त लगते हैं, आप इस वेश में क्यों विचरण कर रहे हैं? शिवमस्तु राज्ञा, लगता है लोक मंगल के लिए आप ऐसा वेश धारण किए हैं। तो राजा रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश लेकर फिर वो गंगा सागर नहीं गए। तो एक चंद्र तमोहंति, अगर एक आदमी को भी कोई भक्त बना देता है, योग्य आदमी को, जैसे मनमोहन सिंह को कोई भक्त बना दे, तो पूरा इंडिया उनके तरफ झुक जाएगा। मनमोहन जप करने लगे तो सब लोग जप करने लगेंगे। कोई बड़ा आदमी कुछ स्टाइल करता है, जैसे राजीव गांधी ने ऐसा स्टाइल किया तो सब लोग ऐसा स्टाइल करने लगे थे, ऐसा चादर किए थे। अगर प्रधानमंत्री तिलक लगाने लगे, जप करने लगे, तो सब लोग अनुसरण करने लगेंगे। कोई बड़ा हीरो अपने पैंट का आगे का ये होता होल कर देता है तो सब लोग होल करने लगते हैं। कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ शिखा रख लेता है तो बहुत लोग यहाँ शिखा रखने लगते हैं, नकल करते हैं लोग, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ। कोई बड़ा आदमी अगर भक्त हो जाए तो उसे आसान हो जाता है प्रचार करना, इसलिए ये राज विद्या है। जब अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए तो बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हो गया पूरे विश्व में। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्त ही बनाना है तो ऐसा आदमी को भक्त बनाइए कि वो पूरा प्रकाश फैला दे भक्ति का। एक चंद्र तमोहंती नक्षत्र किम प्रयोजनम, एक ही चंद्रमा है जो अंधकार को दूर करता है, हजारों लाखों करोड़ों तारों का क्या प्रयोजन है? यह समझ करके जड़ भरत हमको उपदेश करके भक्त बना दिए। तो ऐसे जड़ भरत का चरित्र जो है बहुत सुंदर है, और ऐसा आचरण करते थे, सांसारिक दृष्टि से वो पागल थे, मुखवत थे, लेकिन वो बहुत बड़े स्वरूप सिद्ध भक्त थे। उनके पिताजी भी नहीं समझ पाए कि ये भक्त है, कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया कि वो भक्त है। हम लोग थोड़ा भक्ति करते हैं लेकिन समझा देते हैं कि मैं भक्त हूँ, अब क्या समझते हैं, मैं ऊंच कोटि का भक्त हूँ। थोड़ा भक्ति करते हैं लेकिन उसका प्रचार ज्यादा कर देते हैं, मैं इतना जप करता हूँ। प्रचार जो है अपने भक्ति का प्रचार नहीं होना चाहिए, भगवान के भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जब हम अपना प्रचार करेंगे तो प्रचार नहीं है, भगवान का प्रचार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो राजर्षि जड़ भरत जो है अपना प्रचार नहीं किए कभी भी। इस तरह से आगे आप और कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।